ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಧ್ಯಾಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಹೇಶಂ ರಜತಗಿರಿನಿಭಂ ಚಾರುಚಂದ್ರಾಪತಂಸಂ ರತ್ನಾಕಲ್ಪೋಜ್ವಲಾಂಗಂ ಪರಸುಮೃಗವರಾ ಭೀತಿಹಸ್ತಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಪದ್ಮಾಸೀನಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸ್ತುತಮರಗಣಿರ್ ವ್ಯಾಘ್ರಕೃತ್ಯಂ ವಸಾನಂ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ನಿಖಿಲಭಯಹರಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪದ್ಮಭವಂ ವಸಿಷ್ಠಂ ಶಕ್ತಿಂ ಚ ತತ್ಪುತ್ರ ಪರಾಶರಂ ಚ ವ್ಯಾಸಂ ಸುಕಂ ಗೌಡಪದಂ ಮಹಂತಂ ಗೋವಿಂದ ಯೋಗೀಂದ್ರಮಥಾಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಂ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಥಾಸ್ಯ ಪದ್ಮ ಪಾದಂ ಚ ಹಸ್ತಾಮಲಕಂ ಚ ಶಿಷ್ಯಂ ತಂತ್ರೋಟಕಂ ವಾರ್ತಿಕಕಾರಮನ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುಂ ಸಂತತಮಾನತೋಸ್ಮಿ. ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ದೇಹಾಯ ತ್ರಿವೇದಿ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಷೇ ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ಸೋಮಾರ್ಥ ಧಾರಿಣೇ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. 2 ಮಿನಿಟ್ ಭಗವನ್ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕರ್ತೇ ಹೇ. ಪಹಲಿ ಲೈನ್ ಮೇ ಬೋಲುಂಗಾ, ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಆಪ್ ಲೋಗ್ ಬೋಲ್ನಾ.
ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ರಾಮ ರಾಘವ ರಾಮ ರಾಘವ ರಾಮ ರಾಘವ ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ರಾಮ ರಾಘವ ರಾಮ ರಾಘವ ಗವ ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ರಾಮ ರಾಘವ ರಾಮ ರಾಘವ ರಾಮ ರಾಘವ ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ರಾಮ ರಾಘವ ರಾಮ ರಾಘವ ರಾಮ ರಾಘವ ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ಕೃಷ್ಣ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಶವ ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ಕೃಷ್ಣ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಶವ ಪಾಹಿ ಮಾಂ. कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम कृष्ण केशव कृष्ण कृष्ण केशव रक्ष माम चंद्रशेखर 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 पाहि माम चंद्रशेखर 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 पाहि माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम चंद्रशेखर रक्ष माम चंद्रशेखर रक्ष माम
ओम 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 आदिगुरु सर्वज्ञ भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित वाक्य वृत्ति पर विशेष प्रवचन का कार्यक्रम मातोश्री बेलाबेन मुलजी भाई दैया तथा प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट संयुक्त आयोजन में ये विशेष प्रवचन का कार्यक्रम संचालन होता रहता है। जिस कार्यक्रम के अंतर्गत गीता चिंतन माला ये नाम दिया गया है उसके अंतर्गत वैदिक सनातन धर्म के पूर्वीय दर्शन के बारे में अनेक शास्त्रों के आधार पर विचार चलता रहता है। ऐसा नहीं कि गीता चिंतन माला के अंतर्गत खाली गीता के ही बारे में चिंतन होता हो। उपनिषद के बारे में भी विचार चलता है, अन्य वेदांत के प्रकरण के बारे में भी विचार चलता है, पुराणों के बारे में भी विचार चलता है, स्मृति ग्रंथों के बारे में भी विचार चलता है। सब मिलाकर पूर्वीय दर्शन से संबंधित वैदिक सनातन धर्म से संबंधित वेद प्रतिपाद्य विषय वस्तु के आधार पर ही यह चिंतन चलता है। इसके बारे में ये एकादश दिवसीय विशेष प्रवचन का कार्यक्रम तो हमसे अनुमति मांगी गई थी और हमने कहा ठीक है, पिछले बार भी ये करते रहे हैं। आत्मबोध के बारे में किया, शिवानंद लहरी के बारे में भी किया, 5-6 साल से लगातार हम करते आए हैं। तो इस बार भी वो क्रम चल रहा है, आज से आरंभ हो रहा है। इसमें विचार करने के लिए हमने सर्वज्ञ आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज द्वारा विरचित वाक्य वृत्ति को आधार बना रहे हैं। ये स्तोत्र भी विशुद्ध अद्वैत वेदांत के बारे में ही विचार करते हैं। अभी एक घंटा पहले हमारे कमरे में एक संवाद चल रहा था, दो माताएं थी, आपस में संवाद चल रहा था। एक माता दूसरी मां को कह रही है कि तुम्हारा बेटा बड़ा गुणवान है, और दूसरी माता कहती है कि गुणवान तो है, ज्यादा गुणवान है। ये संवाद चल रहा था, गुणवान तो है, वो ज्यादा गुणवान है। तो ज्यादा गुणवान हुआ तो क्या हुआ भाई? तो मां बोलती है, शादी करके जब घर में आए तो हम बहू हो गए, मां के घर में थे तो बेटी रहे, शादी करके घर में आए तो बहू हो गए, तो हमारे ऊपर सास थी। बेटा ज्यादा गुणवान हो गया इसलिए हमको सास बनने का मौका नहीं दिया। बात समझ रहे हैं ना? उसको सबसे बड़ा दुख यह है कि वो सास नहीं बन पाई। क्यों भाई, सास क्यों नहीं बन पाई? बेटे ने शादी नहीं किया तो क्या करोगे? सास बन पाएगी वो? तो हमने कहा उसको, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि न तुम्हारा बेटा गुणवान रहे न अधिक गुणवान रहे, हम उसको निर्गुण बनाना चाहते हैं। हमारा उपक्रम क्या है? है, हम उसको निर्गुण बना देना चाहते हैं। बस हमारी चले तो हम उसको निर्गुण बना दें, और निर्गुण बनाने का उपक्रम ही आदिगुरु शंकराचार्य जी का अद्वैत सिद्धांत है। जब तक व्यक्ति अद्वैत वेदांत का आश्रय नहीं लेगा तब तक वह या तो दुर्गुणी होगा, बेगुणी होगा, या फिर गुणवान होगा या अधिक गुणवान होगा। क्योंकि गुण माया का धर्म है, गुण जो है माया में स्वरूप से ही रहता है। माया उपाधि वाला हुए बिना गुणवान होगा नहीं। अब जिसको तुम दुर्गुण कहते हो वो भी उसी माया के चलते हैं, जिसको तुम गुणवान कहते हो वो भी माया के चलते हैं, जिसको तुम अधिक गुण कहते हो वो भी माया के चलते हैं। वास्तव में सोपाधिक चैतन्य ही गुणवान भी होता है, दुर्गुणी भी होता है, अधिक गुणी भी होता है, उपाधि रहित जो शुद्ध चैतन्य है वही निर्गुण होता है। और जब तक गुणवान रहेगा या अधिक गुण रहेगा या निर्गुण दुर्गुण रहेगा ये सब रहेगा, तब तक ये संसार का झंझट लगा रहेगा और समग्र झंझटों से मुक्ति चाहते हो, मुक्ति होना चाहते हो तो निर्गुण का आश्रय लेना ही पड़ेगा। इसलिए उपाधि ही आदि और व्याधि का कारण है। जब निरुपाधिक होता है तो निराधि निरव्याधि कोई आदि व्याधि कुछ भी नहीं रहता है भाई। बड़ा ही सुंदर ये प्रसंग है वेदांत का। वेदांत का लक्ष्य ही यही है। इस शंकराचार्य द्वारा विरचित वाक्य वृत्ति पर विश्वेश्वर विरचित संस्कृत की टीका भी है और यह आनंद ग्रंथ पुणे से प्रकाशित हुआ है। शुरू में टीकाकार एक भूमिका में लिखते हैं, परम कृपा निधि ही श्रीमद् शंकराचार्य भगवत पादः जीव मात्र के प्रति, मनुष्य मात्र के प्रति परम कृपा रखने वाले कृपा निधि तापत्रयार्क संतप्तानाम, तीन प्रकार के जो ताप हैं, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप, इस सोपाधिक वालों को ही ये तीन ताप तपाते रहते हैं। उपाधि वाले को ही, सोपाधिक चैतन्य को ही ये त्रिविध ताप, तीन ताप सताते रहते हैं और ये तीन ताप क्या करते हैं तो बोले अपरिमित जननादि संसाराध्व, एक बार चल के पूरा नहीं होता, अपरिमित कई बार जनन मरण आदि संसार की यात्रा है। पैदा होकर आए, मरकर गए, पैदा होकर आए, मरकर गए, यात्रा ही तो यात्रा है। जनन मरण यही संसार यात्रा है और क्या। और ये यात्रा करते करते जीव थका हुआ है, ये यात्रा कब तक करता रहेगा ये जीवात्मा, श्रांत हो गया, थक गया। जिसको ये बोध हो रहा है कि ये जन्म और मृत्यु रूपी यात्रा करते करते हम थक चुके हैं, कहते हैं ना आदमी सोया जमी पर लोग कहते हैं मर गया, वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया, पर लोग कहते हैं मर गया है। और यात्रा ही यात्रा है वो, अब थक चुका है वो, ऐसे जो थके हुए यात्री है उसके लिए आत्मज्ञान शिशिर मधुर जला कांक्षी नाम, क्योंकि गर्मी से यात्रा करते करते गर्मी से जो थका हुआ होता है तो वह यही चाहता है ठंडा कहीं छाएं मिल जाए और ठंडा जल पीने को मिले। अब ये दोनों लक्ष्य उसका, ठंडा छां और ठंडा जल, ऐसे आकांक्षी यात्री उनके लिए ये उपलब्ध हो तो ये कैसे उपलब्ध होगा? उपासना के द्वारा, सगुण उपासना के द्वारा उसको शीतल छाया की प्राप्ति होगी, क्योंकि सगुण परमात्मा का सान्निध्य उसको प्राप्त होगा। सगुण परमात्मा के जो सान्निध्य की प्राप्ति है वो संसार यात्रा से थके हुए जीवात्माओं के लिए वही शीतल छाया है। लेकिन परमात्मा के सान्निध्य से उसको शीतल छाया तो मिल जाए, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, समझे? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जहां शीतल छां हो वहां शीतल पानी भी हो, ये जरूरी नहीं है भाई। शीतल छां तो छतरी ओढ़ लोगे तो भी शीतल छाया हो जाएगी, होगी कि नहीं? क्या छतरी खोलते ही तुमको पानी पीने को मिल जाएगा? छाया तो मिल जाएगी, पानी तो नहीं मिलेगा ना। टीकाकार ने बड़ा साहित्यिक शब्द का प्रयोग किया है, शारीरिक मीमांसा जलाशय गमनार्थम, शरीरे भवा शारीरिक, इसी शरीर में वह जलाशय खोजनी है जलाशय, शीतल जल है यही, लेकिन वह हमें पता नहीं है। वाक्य वृत्ति ज्ञानोपदेश करण प्रमाण परिकल्पनेना अंत शीतलताम, बड़ा सुंदर शब्दों का विन्यास किया है और ये अद्वैत वेदांत का यही एक रहस्य मर्म है। वाक्य वृत्ति, वाक्य शब्द का अर्थ होता है वेदांत वाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि आदि वाक्य। उस वाक्य श्रवण मनन निदिध्यासन जनित अखंडाकार वृत्ति, वाक्य प्लस वृत्ति, वाक्य वृत्ति, वाक्य से, महावाक्य से उत्पन्न होने वाला अंतःकरण की वृत्ति, वह वृत्ति ही अखंडाकार वृत्ति ही, ज्ञान रूपी मधुर जल, शीतल जल के रूप में परिणत होगा। तब अनादिकाल से संसार यात्रा में श्रांत हुआ हुआ यात्री को सगुण परमात्मा का सान्निध्य और निर्गुण ब्रह्मात्मिक के ज्ञान रूपी जल की भी प्राप्ति होगी। तभी तपत्रय से संतप्त हुए हुए जीवात्मा को परम शांति की प्राप्ति होगी। ये प्रयोजन है। ये बात परम कारुणी का सर्वज्ञ भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी इसको जानते हैं, इसलिए इसके लिए भगवान शंकराचार्य जी ने उस लक्ष्य को प्राप्ति कराने का माध्यम रूप वाक्यवृत्ति की रचना की। स्वयं शंकराचार्य जी महाराज इसकी रचना मंगलाचरण से करते हैं। आप 5 श्लोकों का अभ्यास करो, जैसे कि हम हमारे हमेशा कहा करते हैं, हमारा नियम है, जब भी हम जहां भी प्रवचन करते हैं तो कम से कम 5 श्लोकों का हम अभ्यास कराते हैं। व्याख्या हम अपनी मर्जी से करेंगे, तो कम से कम इस अभ्यास से आप लोगों को थोड़ा संस्कृत के श्लोक पढ़ने का भी अभ्यास बन जाए। और दूसरी बात है, संस्कृत वाणी शब्द स्वयं अपने जिह्वा से उच्चारण करना, कान से श्रवण करना, यह भी शुभ कर्म है। सिर्फ कान से श्रवण भी शुभ कर्म है, तो दुर्भाग्य की बात है कि संस्कृत ही आज शिक्षा में से हटा दिया जा रहा है। पहले अनिवार्य संस्कृत भाषा, संस्कृत पत्र पेपर हुआ करता था शिक्षा में। आज पुस्तकों में से, सिलेबस में से संस्कृत भाषा ही हटा दी गई है, जबकि हमारी मान्यता यह है, हमारी प्राचीन मान्यता यह है, संस्कृत भाषा स्वयं में पवित्र भाषा है, इसका श्रवण भी पुण्यदायक है। उच्चारण तो है ही है, तो आप लोग अभ्यास करो, क्योंकि प्रेमपुरी आश्रम ने इसके कॉपी आप लोगों को प्रिंटेड निकाल के दिया है, रख दिया है, आपके हाथ हाथ में है, अभ्यास करो। सर्गस्थिति प्रलय हेतु अचिंत्य शक्तिम् विश्वेश्वरं विदित विश्वमनंतमूर्तिं निर्मुक्त बंधनं अपार सुखांबुराशिं श्रीवल्लभं विमलबोधघनं नमामि। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णुर् मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपम् తస్యాంగ్రి పద్మం ప్రణతోస్మి నిత్యం తాపత్రయార్క సంతప్తః కచ్చిత్ ఉద్విగ్న మానసః సమాధి సాధనైర్యుక్తః సద్గురుం పరిపృచ్ఛతి. అనాయాసేన యే అస్మాన్ అనాయాసేన యే నాస్మాన్ ముచ్చేయం భవబంధనాత్ తన్మే సంచిప్య భగవన్ కేవలం కృపయా వద. సాధ్వీతే వచన వ్యక్తి ప్రతిభాతి వదామితే ఇదం తదితి విస్పష్టం సావధాన మనః శృణు. ఈ ప్రకరణ గురు శిష్య సంవాద్ సే ఆరంభ హోతా హై. శిష్య కైసా హై ఔర్ గురు శిష్య కా లక్ష్య క్యా హై, శిష్య కా ఉద్దేశ్య క్యా హై, శిష్య కిస్ చీజ్ కో జాన్నా చాహతా హై. ఇన్ శ్లోకో సే స్పష్ట హో జాయేగా. और शिष्य की आकांक्षा को गुरु किस तरह पूरा करते हैं, कैसे समाधान देते हैं, यह भी इन स्तोत्रों से स्पष्ट हो जाएगा. यानी मुमुक्षुओं का लक्ष्य क्या होना चाहिए, वह शिष्यों के प्रश्नों से पता चल जाएगा. और गुरु का उपदेश या गुरु का अनुभव शिष्य को कैसे दिया जाए, ये इन उपदेशों से पता चलेगा. शंकराचार्य जी स्वयं भगवत स्वरूप हैं, इसलिए हम लोग आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में कहते हैं. शंकरम शंकराचार्य, स्वयं साक्षात शिव ही शंकराचार्य जी के रूप में अवतरित हुए हैं. शंकर एव शंकराचार्य, केशवम एव बादरायणम, भगवान विष्णु ही खुद बादरायण के रूप में अवतरित हुए, भगवान शिव ही खुद शंकराचार्य जी के रूप में अवतरित हुए. विष्णु बादरायण के रूप में अवतरित होकर क्या किया उन्होंने? तो आप लोग कहोगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय तु दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. भगवान का जो अवतार है, उस अवतार का प्रयोजन सत्पुरुषों की रक्षा और दुष्टों का संहार. गीता में बता दिया गया है। लेकिन यदि भगवान विष्णु केशव स्वयं बादरायण के रूप में अवतारित हुए हैं तो उन्होंने कोई दुष्टों का संहार नहीं किया। कहीं इतिहास नहीं है भाई, बादरायण ने, वेदव्यास जी ने, बादरायण ने अवतार लेकर किसी का संहार किया हो ऐसा तो कहीं भी उल्लेख नहीं आता है। किसी को बचाया हो ऐसा उल्लेख नहीं है। तब ये गीता का ये श्लोक निरर्थक हो जाएगा उस अवतार में। बादरायण के अवतार के प्रसंग में ये श्लोक क्या निरर्थक हो जाएगा? फिर निरर्थक तो फिर भी नहीं होगा। तो उन्होंने संहार किसका किया? वेदांत सूत्रों की रचना करके मूला विद्या का संहार कराया। प्रयोजन तो फिर भी यथावत ही है वो है? क्योंकि जितने भी राक्षस हैं सभी अज्ञानियों के प्रतीक हैं। राक्षस जितने भी हैं भगवान के अवतार लेकर संहार किए गए, मारे गए जो राक्षस हैं वे सब अज्ञान के प्रतीक हैं, प्रतिनिधि करते हैं। विद्वान हो सकते हैं लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकते। रावण विद्वान तो था, ज्ञानी नहीं था वो। विद्वता अलग चीज है, परोक्ष ज्ञानी भी विद्वान कहलाएगा लेकिन परोक्ष ज्ञान अज्ञान का ही अंतर्गत है, वो अज्ञान का ही स्वरूप है। परोक्ष ज्ञानी को अज्ञान नाश नहीं होता है, अपरोक्ष ज्ञानी को ही अज्ञान के निवृत्ति होती है। इसीलिए मूला विद्या का संहार ही समस्त राक्षसपना का संहार है। असुषु प्राणेषु रमन्ति इति असुरः। सामान्य इस परिभाषा से, असुरों की परिभाषा से, जीव मात्र असुर है क्योंकि जीव मात्र प्राणजीवी हैं, जीव मात्र इंद्रिय जीवी हैं, इंद्रियों में रमण करने वाले हैं। इनको तो इतना ही चाहिए, गीता में उसका संकेत कर दिया है। विषय इंद्रिय संयोगात एतत् अग्रे अमृतोपमम्। अग्रे अमृतोपमम् बोले, अग्रे अमृतोपम परिणामे, हमको उसका परिणाम देखना नहीं है। मरने के बाद क्या होता है हमको क्या पता है, किसको क्या पता मरने के बाद क्या होगा, किसको क्या पता भाई। जीते जी जो है उसका हमें पता है, तुम्हें पता है, सभी को पता है। जीते जी तो यही है कि विषय इंद्रिय संयोगात एतदग्रे अमृतोपम। बस इंद्रिय और विषय का संयोग में जो आनंद की अनुभूति हुए अनुभव करे उसको क्या कहते हैं? असुर। उसी का नाम असुर है। असु माने इंद्रियां, असु का अर्थ प्राण, प्राण का अर्थ इंद्रियां। और इंद्रिय और विषय के संयोग में रमण करे, आनंद का अनुभव करे, अग्रे अमृतोपम। इस आसुरी भाव का संहार कब होगा? आत्मज्ञान के बिना इस आसुरी भाव का संहार हो ही नहीं सकता है। वही गीता में कहा भगवान श्री कृष्ण ने, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य प्रज्ञा तस्य कार्यं न विद्यते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितम्। तो वास्तव में ये असुर नहीं है, आत्मसंतुष्टि, स्वयं से स्वयं कोई संतुष्टि, इंद्रिय और विषय जन्य संतुष्टि असुर का लक्षण है। स्वयं से स्वयं की संतुष्टि ये ज्ञानी का लक्षण है, और वही असुर भाव का संहार कर पाएगा। तो वेदव्यास जी ने क्या किया, ब्रह्मसूत्रों की रचना करके जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया, और इसके माध्यम से तब अज्ञान का संहार किया। रक्षा किसकी की? परित्राणायाम साधु नाम, रक्षा किसकी की? उस अज्ञान के चलते ये जो जीव है, जो परमात्मा का ही रूप है, उसकी रक्षा की। जीव को माया जबरदस्ती मोह में फंसा रही थी, और उस माया का संहार करवाकर जीव की रक्षा, ब्रह्मात्मिक के बोध, यही साधु की रक्षा है। तो वेदव्यास जी ने सूत्रों की रचना की, वेदांत सूत्रों की। तब उस सूत्रों के अर्थ को समझाने के लिए स्वयं शंकर भगवान शंकराचार्य जी के रूप में अवतार लिए, तो उन्होंने सूत्रों पर भाष्य की रचना की। सूत्रों की रचना की बादरायण ने, विष्णु बादरायण बनकर सूत्रों की रचना की, शिव शंकराचार्य बनकर सूत्रों पर भाष्य की रचना की। इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतौ पुनः पुनः। तो शंकराचार्य स्वयं शंकर रूप होने के कारण उनको, उनका समस्त आचरण ही मंगल रूप है। परमात्मा का आचरण किसी के लिए अमंगल हो सकता है? परमात्मा का कार्य किसी के लिए अमंगल हो सकता है? हो सकता है, असुरों को तो अमंगल होगा ना। परमात्मा का कार्य असुरों को तो अमंगल होगा कि नहीं, बोलो? अमंगल होगा, लेकिन जो असुर नहीं है उनके लिए तो मंगल है, भक्तों के लिए मंगल है, मुमुक्षुओं के लिए मंगल है। तो स्वयं परमात्मा मंगल रूप होने के कारण, मंगलानां च मंगलम विष्णु सहस्र नाम में पढ़ा है कि नहीं, परमात्मा तो मंगल का भी मंगल है। समस्त शुभ प्रतीकों का भी वह परम शुभ है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनु मतम, ये चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंसि पश्यति। जिसको आंख नहीं देख सकती, लेकिन जिसके चलते आंख देखने की क्षमता वाले हो जाते हैं, जिसके लिए किसी और मंगल की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिसके चलते सभी प्रतीक मंगल के प्रतीक हो गए, है ना? पवित्राणाम पवित्रम यो, गंगा जी को हम पवित्र मानते हैं, तुलसी को हम पवित्र मानते हैं, शालिग्राम के जल को हम पवित्र मानते हैं, लेकिन गंगा जल पवित्र हुई कैसे? उसकी पवित्रता तो परमात्मा के चरणों के स्पर्श से हुई है, और उस गंगा जल से परमात्मा को स्नान करा के पवित्र कराओगे? बोलो, शालिग्राम को गंगा जल से स्नान करा के शालिग्राम पवित्र होगा? हम लोग करते यही है, मानते क्या है? शिवलिंग को गंगा जल से स्पर्श करा, स्नान करा के हम शिवलिंग को पवित्र करते हैं, है ना? और गंगा पवित्र हुई भगवान शिव के मस्तक में स्पर्श करके, जटा कटा संभ्रमम वियद व्यापी तारा गणगुणित फेनोद्गम रुचि प्रवाहो वाराम यह प्रिशत लघु दृष्ट शिरसिते। हे शिव, ये जो गंगा जी है, इतनी विशाल जो गंगा आपके सिर से निकलने के बाद वो सात समुद्रों के रूप में परिणत हो गई, इतना विशाल समुद्र गई, वो जलराशि आपके सिर में प्रिशत लघु दृष्ट, एक पानी का छोटे से धार के रूप में प्रतीत होने लग गया। तो उसी के चलते गंगा पवित्र हुई है, और शिव पवित्रों के पवित्र, शिव के जटा के स्पर्श करके गंगा पवित्र हुई, और वे गंगा जल से शिवलिंग स्नान करा के शुद्ध करेंगे। ये हमारी भावना का खेल है और कुछ भी नहीं है। तो शंकर और शंकराचार्य जी और बादरायण, केशव और बादरायण, इस दोनों का सहमति से ही दोनों का ये अवतार हुआ है। विष्णु और शिव ने विचार करके सहमति पूर्वक कि तुम शंकर शंकराचार्य जी के रूप में अवतार लेना, मैं बादरायण के रूप में अवतार लूंगा, या तुम बादरायण के रूप में अवतार लेकर वेदांत सूत्रों की रचना करो, मैं शंकराचार्य के रूप में अवतार लेकर भाष्य लिखूंगा। ये प्रयोजन क्यों ऐसा करना पड़ा भाई? तो इतिहास है, बीच में अवैदिक संस्कार और संस्कृति का साम्राज्य रहा भारत भूमि में, वो वेद को प्रमाण मानना निषेध कर दिया गया। वेद प्रमाण नहीं है, वेद जो कह रहा है, वेद मूलक कोई कर्म मत करो, और वेद को जब प्रमाण नहीं माना तो फिर वेदांत को क्या प्रमाण मानेंगे? तब हुआ क्या, अनात्मवाद शुरू हुआ, सर्वम शून्यम, कोई ब्रह्म नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कहीं कोई आत्मा नहीं है, सर्वम शून्यम सर्वम क्षणिकम, वेद को जला दिया गया, वेद मूलक मंदिरों को तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया, तमाम मूर्तियों को तोड़ दिया गया, फेंक दिया गया। तो वेद का उद्धार, वेदांत दर्शन का उद्धार, वैदिक कर्मों का उद्धार, यज्ञ यागादि का उद्धार करना था, तो वेद और वेद मूलक सिद्धांत सही है ये प्रतिष्ठापित करने के लिए केशव बादरायण के रूप में अवतरित हुए और सूत्रों की रचना की शंकर शंकराचार्य जी के रूप में अवतरित होकर भाष्य की रचना की, तब जाकर
परमात्मा का अस्तित्व, परमात्मा है, ईश्वर है, जीव है, जगत है, और इस तरह जीव ब्रह्म की एकता ही मोक्ष का कारण है। तो ये उद्देश्य से शंकराचार्य जी पृथ्वी में अवतरित हुए और वास्यों की रचना के साथ साथ अनेक स्तोत्रों की रचना की। पूर्वीय दर्शन में अद्वैत वेदांत के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा देन है। शंकराचार्य जी मंगलाचरण करते हैं, दो कारणों से मंगलाचरण करनी चाहिए। एक तो निर्विघ्न ग्रंथ परिसमाप्ति, उसके लिए मंगलाचरण करनी चाहिए। शंकराचार्य जी स्वयं मंगल रूप होते हुए उनके द्वारा मंगलाचरण करने की आवश्यकता नहीं, तो कहो तो शिष्य शिक्षार्थम मंगलाचरणम, शिष्यों को उपदेश या शिक्षा देने के लिए इस प्रकार का आचरण शंकराचार्य जी कर रहे हैं। गीता में भी कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, श्रेष्ठ यदेद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतर जना आचरति, यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद् देवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तद् अनुवर्तते। संसारी अनुकरण करके जल्दी सीखता है। बच्चे को थ्योरिकल सिखाने लगो तो उनको बहुत मुश्किल होता है, समझे कि नहीं? बच्चों को थ्योरिकल सिखाने लगो तो बहुत मुश्किल होता है, प्रैक्टिकल सिखाने लग जाओ तो तुरंत एक्सेप्ट करते, तुरंत समझ जाते हैं वो। बच्चों को कहो बेटा आटे में पानी डालकर आटा गूंदकर चकले बेलने से बेलकर तवा में डालकर रोटी पकाई जाती है, क्या समझेगा वो? बोलो ये थ्योरी बताओगे वो बच्चा क्या समझेगा है? लेकिन जब बच्चा खड़ा है, मां आटा निकालती है, पानी डालती है, गूंदती है, गोला बनाती है आटे की, चकले में रखकर बेलती है, तवा में डालती है, बढ़िया रोटी पकाती है, समझ में आ ही गया उसको रोटी इस तरह बनता है। तो रोटी बनाते बनाते बच्चा वो भी थोड़ा सा आटा लेकर अपने आप गोला बनाने लग जाएगा, अपने आप बेलने लग जाएगा, मैं भी रोटी बनाऊंगा, देख लो। तो महापुरुषों को चाहिए कि स्वयं आचरण करके दिखावें, तभी अज्ञानी उसका अनुकरण करेगा। तो शंकराचार्य जी हालांकि सर्वज्ञ हैं और मंगल रूप है, उनको मंगलाचरण की आवश्यकता नहीं किसी ग्रंथ रचना से पहले, लेकिन यदि वो मंगलाचरण नहीं करेंगे तो बोले हमारे गुरु ने मंगलाचरण नहीं किया, हम क्यों करें, बड़ी जटिल समस्या हो जाती है, तो वो लोग भी नहीं करेंगे। जैसा कि हुआ है, भगवान बुद्ध के बारे में एक कहावत है कि शिष्यों को जब शिक्षा दे रहे थे भगवान बुद्ध और अनेक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते जाते थे, निर्वाण परिनिर्वाण तक का जो है वो प्रश्नों का उत्तर देते थे। कहते महाराज निर्वाण के बाद क्या होता है, मोक्ष के बाद क्या होता है, वेदांत के भाषा में, बौद्धों के भाषा में निर्वाण के बाद क्या होता है, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी का जो अभिषय है वो वाणी से कैसे कहा जाए। निर्वाण तो मोक्ष तो वाणी का अभिषय है, वाणी से कहा नहीं जा सकता। तो कहते हैं निर्वाण के बाद क्या होता है, ये प्रश्न का उत्तर भगवान बुद्ध मौन हो जाते थे। देखो मौन उपदेश तो शंकराचार्य जी क्या, मौन उपदेश तो दक्षिणामूर्ति ने भी की है, और मौन उपदेश भगवान बुद्ध ने भी की। लेकिन सनत कुमारों ने दक्षिणामूर्ति भगवान के जो मौन उपदेश को भी सार्थक मानकर अर्थ ग्रहण किया और अपने सारे प्रश्नों का समाधान कर ली। और भगवान बुद्ध के शिष्यों ने उसका अर्थ गलत कर ली, अलग ही अर्थ कर दिया। निर्वाण के बाद कुछ नहीं रहता, यदि कुछ रहता होता तो भगवान बुद्ध कुछ न कुछ कहते। तो इसका मतलब यह हुआ कि निर्वाण के साथ साथ आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त होता है, आत्मा भी नहीं रहता। तो शून्यवाद आ गया, देख लो। जबकि भगवान बुद्ध मौन हुए किस अर्थ में, वाणी से नहीं कहा जा सकता, इस अर्थ में मौन हुए। अब उसका अर्थ क्या किया, शून्यवाद, अनात्मवाद। अब जबकि मौन का अर्थ शंकराचार्य माने दक्षिणामूर्ति भगवान ने जब सनत कुमारों को मौन उपदेश दिया, मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्त्वम युवानम, जीव ब्रह्म की एकता, जीवो ब्रह्मैव नापरः, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, यो मुद्रया यो भद्रया मुद्रया। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए आचरण करना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध मौन हो गए तो शून्य का अर्थ कर दिया उनका शिष्यों ने, अर्थ का अनर्थ कर लिया। शंकराचार्य जी हर स्तोत्रों में हर ग्रंथ की रचना में मंगलाचरण करते ताकि और लोग भी उस परंपरा को निर्वहन करें। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, हे अर्जुन उत्सीदे यूरिमे लोका न कुरियाम कर्मचेद अहम, मुझे कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कर्म करने से कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है कर्मों का, कोई प्रयोजन न होते हुए भी मैं कर्म कर रहा हूं। यदि मैं कर्म नहीं करूं तो सभी लोग मेरा अनुकरण करेंगे, भगवान बैठे बैठे उनको खाने को मिल रहा है तो हमको क्यों नहीं मिलेगा, कृष्ण को बैठे बैठाए खाने को मिल रहा है तो हमको क्यों नहीं मिलेगा कहेंगे, तो कोई भी फिर कर्म ही नहीं करेगा। तो कृष्ण ही कहते हैं कि नहीं नहीं, हम दिन भर गाय चराते रहे तभी हमको खाने को मिला है। तो अच्छा भाई, हम भी गाय चराते हैं, खाने को मिलेगा, कृष्ण खुद गाय चराते हैं तब खाने को मिलता है, तो हमको बैठे बैठे कैसे मिलेगा, तो हमको भी कुछ तो करना ही पड़ेगा, अनुकरण। शिष्य शिक्षार्थम, इसके लिए भी शंकराचार्य जी मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण में जैसे कि हम हमेशा कहा करते हैं, ब्रह्मसूत्र भाष्य में खुद शंकराचार्य जी ने त्रिविध मंगलाचरण की चर्चा की है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। इस श्लोक में शंकराचार्य जी ने नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया है। नमः, ये न, ये निषेधात्मक शब्द है। मां, ये अहमात्मक शब्द है। ये अहंकारात्मक प्रतीक है मां, इसी को मैं अहंकार में मैं, गुजराती में तो हूं कहवाए ना, हिंदी में मैं, और नेपाली भाषा में तो मां मां ही होता है, आई मां, आई मैं, आई हूं, है ना, अहम। यह अहंकार का प्रतीक है। न का अर्थ निषेध का प्रतीक है। न मां माने अहंकार को हटाना, अपने अस्तित्व का विसर्जन, ये नमः का प्रयोजन है, अस्तित्व विसर्जन। अस्तित्व का विसर्जन का मतलब प्रतिबिंब और बिंब, ये दोनों संवाद कर रहे हों। मान लो एक एग्जाम्पल, प्रतिबिंब और बिंब दोनों संवाद कर रहे हों, समझ रहे हैं ना, प्रतिबिंब बिंब। आप मिरर के आगे खड़े हो जाओ, दर्पण के आगे खड़े हो जाओ, मिरर के आगे खड़े हो जाओ, तो मिरर के अंदर प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। मान लो प्रतिबिंब बिंब से ये कह रहा हो, हे बिंब, मेरा अस्तित्व नहीं है, तुम्हारे से अलग मेरी कोई अस्तित्व नहीं है। प्रतिबिंब ये सच कह रहा है कि नहीं है? प्रतिबिंब यदि बिंब से ये कह रहा हो, तुम्हारे अलावा मेरा स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो प्रतिबिंब सच कह रहा है कि नहीं कह रहा है? है? तो आप फिर क्यों मैं करते फिरते हो? वो सच कह रहा है तो फिर आप क्यों मैं करते फिरते हो? मैंने किया, मैंने कहा, मैं। अरे भाई, तुम तो उस परमात्मा बिंब के प्रतिबिंब हो। जीवात्मा तो क्या है? आभास है, आभास, चिदाभास। जीवात्मा तो आभास है। जीवन की, जीवात्मा की जो चेतना है वो तो ब्रह्म चेतना का आभास है। और आभास ये कहे कि तुम्हारे अलावा मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है, तो ये उसकी मूर्खता होगी कि नहीं? प्रतिबिंब ये कहे बिंब से, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, है? प्रतिबिंब ये कहे बिंब से कि तुम अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो, क्या बिंब से स्वतंत्र होकर प्रतिबिंब कुछ कर पाएगा? उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा वो? नमः का अर्थ यही है कि भगवान, आपके सामने मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आप बिंब हैं, मैं प्रतिबिंब हूं। फिर भी आप और मैं ये अलग अलग दिख रहा है, भास रहा है। ये भासने का मूल कारण आप अलग मैं अलग ऐसा नहीं, ये भास हो रहा है। ये भास होने का मूल कारण ये मिरर है, क्या है? प्रतिबिंब क्या कह रहा है? आपसे भिन्न प्रतीत जो हो रहा हूं, मेरे आपसे भिन्न प्रतीत होने में कारण ये मिरर है, मिरर है। इसको फूटने तो दो, फिर किसी माई के लाल के बस की बात नहीं है कि आपसे और हमको अलग करे। है किसी के बस की बात है अलग करना? मिरर फूट जाए तो बिंब से प्रतिबिंब को अलग करने की किसी की सामर्थ्य है? इसी उपाधि के चलते आप अलग और हम अलग हो रहे हैं, नहीं तो ये उपाधि खत्म हो जाए तो आप में और हमारे में कोई भिन्नता सिद्ध नहीं होता। तभी तो शंकराचार्य जी षटपदी में लिखते हैं, सत्यपि भेदापगमनाथ। हे परमात्मा, वास्तव में विचार करते हैं तो आप में और मेरे में भेद रह ही नहीं सकता, भेद का अपगम हो जाएगा। ये बात सत्य है, बिल्कुल यथार्थ है। सत्य भी भेद अपगमे ना था, फिर भी तब अहम न मामकी तुम, मैं तुम्हारा हूं लेकिन तुम मेरे नहीं हो। सत्य भी भेदापगमे ना था तबाहम न मामकी नस्तुम। दृष्टांत दिया शंकराचार्य जी ने, क्यों भाई? सामुद्रो ही तरंगा न क्वचन तारंगो समुद्र। तरंग किसका है? तो तरंग क्या है? सामुद्र है। सामुद्र समुद्रे भव सामुद्र तरंग, समुद्र का तरंग है। जबकि तरंग और समुद्र में भेद संभव ही नहीं है। भेद संभव है? है? समुद्र में और तरंग में भेद संभव है? कोई भेद संभव नहीं है। फिर भी व्यवहार में लोग क्या कहते हैं? ये तरंग किसका है पूछने पर क्या कहते हैं? समुद्र का है। ठीक इसके विपरीत समुद्र किसका है? तरंग का है। कहता है कोई? तरंगों से समुद्र बना है कि समुद्र से तरंग बना है? बोलो, समुद्र किसका है? समुद्र क्या तारंग है? तरंग द्वारा बना हुआ है समुद्र? ये बात सत्य है कि घड़े में और मिट्टी में कोई भेद नहीं, सत्य है कि नहीं? घड़े में और मिट्टी में कोई भेद नहीं है। जब हम विचार करते हैं तो घड़ा और मिट्टी में एकता है, भेद है ही नहीं, भेद सिद्ध हो ही नहीं सकता। फिर भी घड़ा किसका है? मिट्टी का घड़ा कहते हैं कि नहीं? और कोई पूछे कि मिट्टी किसका है? घड़े का, घड़े का मिट्टी। मिट्टी का घड़ा होगा कि घड़े का मिट्टी होगा? मिट्टी का घड़ा तो होता है लेकिन घड़े का मिट्टी नहीं होता। इसी तरह परमात्मा के अंश के रूप में जीव होगा, इसीलिए क्या हो गया? तब अहम, मैं तुम्हारा हूं। घड़ा बोल रहा है मिट्टी से, मैं तुम्हारा हूं क्योंकि तुमसे बना हूं। लेकिन घड़ा ये भी कह रहा है कि मिट्टी से तुम मेरे नहीं हो क्योंकि तुम मेरे से नहीं बने हो। मिट्टी घड़ा से तो नहीं बना है ना? जीव परमात्मा से बना है, इसलिए जीवात्मा क्या कह रहा है? तब अहम, लेकिन परमात्मा जीवात्मा से बना है, न मामकी नस्तो, इसलिए तुम मेरे नहीं हो, मेरे से बने नहीं हो। मेरे जैसे कितने पैदा होंगे और मरेंगे, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? मेरे जैसे का कितना अस्तित्व का बाद हो जाए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? बोलो, हमारे जैसे जीवों के अस्तित्व का बाद हो जाए तो परमात्मा को क्या फर्क पड़ेगा? हजारों जीव का अस्तित्व बाद हो जाए तो भी परमात्मा को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक परमात्मा का यदि बाद होता है तो सभी जीवों का चौपट हो जाएगा कि नहीं, बोलो है? कमरे में 10 मिरर रखें, दर्पण रखें, तो एक व्यक्ति खड़ा है तो 10 प्रतिबिंब खड़े होंगे कि नहीं, और उस 10 में से 2-4 मिरर टूट गया तो 2-4 प्रतिबिंब खत्म हो गए कि नहीं है? 2-4 दर्पण मिरर टूट गया तो 2-4 प्रतिबिंब ही खत्म हो गए कि नहीं? उससे जो बीच में खड़ा बिंब को क्या फर्क पड़ने वाला है, बोलो लेकिन यदि कमरे के बीच में से बिंब हट जाए, कोई प्रतिबिंब बचेगा वहां मिरर के अंदर? ये इसी बात को समझाने के लिए शंकराचार्य जी ने मंगलाचरण के रूप में इस श्लोक का स्मरण किया है।
सर्गस्थिति प्रलय हेतुम अचिंत्य शक्तिम विश्वेश्वरं विदित विश्वमनंतमूर्तिं निर्मुक्त बंधनम अपार रस सुखानुम्रासिं श्रीवल्लभं विमलबोध घनं नमामि।
अहम् नमामि, ये नमामि की व्याख्या हम इतने कर रहे हो, किसकी व्याख्या की? नमामि की। अहम न, मैं नहीं हूं, मेरा अस्तित्व नहीं है, इसलिए नमस्कार का अर्थ ही यही होता है कि अपना अहम का विसर्जन। अहम का विसर्जन ही ना, अहंकारी व्यक्ति नमस्कार कर सकता है? बोलो अंदर यदि ईगो हो तो वो व्यक्ति किसी को नमस्कार कर सकता है, हाथ जोड़ सकता है? एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा, आज के भाषा में नेता कह दो, पहले के भाषा में राजा कहा करते थे, आज के नित भाषा में क्या कहेंगे? नेता कहेंगे, पहले राजा महाराजा कहा करते थे। उसी राज्य का एक बहुत बड़ा राजा था, उस राजा ने खूब दारू पी ली, क्या कर लिया? मदिरा पी लिया, दारू पी ली उसने, खूब दारू का नशा चढ़ा हुआ था। उसी नशे के अवस्था में वह किसी मिरर के सामने पहुंच गया। ध्यान दो, दृष्टांत क्या है? उसी नशे में ही मिरर के सामने पहुंच गया, क्योंकि उसके अंदर मैं सबसे बड़ा राजा हूं या अहम था, तो उसने मिरर के अंदर दूसरा को देखा। देखा कि नहीं? क्योंकि राजा था, सबसे बड़ा था, इसलिए किसी के सामने हाथ तो जोड़ नहीं सकता है। वो तो राजा किसको जोड़ेगा हाथ? हैं? राजा हाथ जोड़ सकता है? मिरर के सामने जब खड़ा हुआ तो मिरर के अंदर उसने किसी को देखा। तो वो सोचने लगा, मैं राजा हूं ये पहले मुझे नमस्कार करें। नियम तो यही है ना, पहले प्रजा राजा को नमस्कार करे। वो खड़े खड़े कहने लगा पहले ये नमस्कार करे मुझे। तो क्या उस मिरर के अंदर का व्यक्ति राजा को पहले नमस्कार करेगा? तो अहंकारी कौन है? राजा अहंकारी है कि मिरर के अंदर का व्यक्ति अहंकारी है? कौन अहंकारी है बोलो? आपको क्या लग रहा है? बिंब अहंकारी है कि प्रतिबिंब? राजा अहंकारी है कि राजा का प्रतिबिंब अहंकारी है? तो फिर वो राजा क्यों दुखी हो रहा है कि मुझे क्यों नहीं नमस्कार करता ये? अभी तक आधा घंटा हो गया खड़ा हूं मैं, नमस्कार क्यों नहीं करता है? अब वो इस बात को कैसे समझे कि दुनिया के सामने अहंकार दिखाओ तो चले, अपने प्रतिबिंब के सामने अहंकार दिखाओ तो नहीं चले? चलेगा? अब समझते तो हो हमारी भाषा को। मगज में नहीं उतर रहा है ये एग्जाम्पल? आपके मगज में नहीं उतर रहा है? एम्प्लीमेंट नहीं होता, एम्प्लीमेंट नहीं होता है। जीवन में उतरता नहीं, मगज में तो उतर रहा है। चौपट हो गया, चौपाटी आएगा ना, इसलिए। एक महात्मा थे, चौपट ये चौपाटी नहीं है, चौपट पट्टी है। अब वो राजा खड़ा है, वो उसको नमस्कार नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। मंत्री या क्या महाराज बोले, देखो ये मुझे नमस्कार नहीं करता। महाराज छोड़ो ना भाई, ये करे ना करे। बोले नहीं नहीं, कैसे छोड़ेंगे, इसको दंड देना है। बोले महाराज एक काम करो, पहले आप नमस्कार करो तो वो करेगा। है? अब वो राजी नहीं हुआ था, फिर भी मंत्री ने बड़ा समझाया कि पहले आप करो, पहले आप करो, ये आपसे भी बड़ा राजा है ये, पहले आप नमस्कार करो। तो कहां से उसके दिमाग में आ गई, उसने हाथ जोड़ा तो उसने फट से हाथ जोड़ ही लिया। उसने हाथ जोड़ा कि उसने हाथ जोड़ लिया? जोड़ा कि नहीं बोलो? बिंब को जो कुछ अर्पण होता है प्रतिबिंब को, तो वो स्वतः होता है। भागवत में इस श्लोक के रूप में ही वेदव्यास जी ने रचना की है। नई बात पना प्रभु रयम निजरा रूप हो, परमात्मा को हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को हमें हमारी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। क्या परमात्मा को तुम्हारे माला की आवश्यकता है? परमात्मा को तुमको तुलसी पत्ता की आवश्यकता है? परमात्मा को एक मिश्री थोड़ी सी कटोरी में, चांदी के कटोरी में मिश्री की आवश्यकता रहेगी? निज लाभ पूर्ण, वो तो अपने में परिपूर्ण आनंद तृप्त है, उसको कुछ जरूरत नहीं तुम्हारी। फिर भी परमात्मा को हम देते हैं, देना पड़ता है, देते हैं। किस लिए देते हो? बोले क्योंकि बिंब को दिया हुआ प्रतिबिंब को स्वतः मिलता है। हम तो बड़े स्वार्थी है ना, परमात्मा को इसीलिए अर्पण करते हैं ताकि वो हमको, क्योंकि हम प्रतिबिंब है, परमात्मा बिंब है, बिंब को दिए बिना प्रतिबिंब को नहीं मिलता। ये बात हम जानते हैं, इसलिए परमात्मा को पहले भोग लगाकर अर्पण करते हैं। छोटी सी कटोरी में है, दो चार दाने काजू किशमिश के रख देते हैं और बाकी डब्बा लेकर अपने खाना शुरू करते हैं, है ना? मां ने कह दिया भोग लगाए बिना नहीं खा पाओगे, तो फिर बच्चा मां भोग लगाओ ना भगवान को कहता है वो, क्योंकि मां कह रही है भोग लगाए बिना नहीं खा पाओगे, तो मां कहले कब कब भोग लगाएगी हमको खाने को मिले। तो ये नियम तो यही ना है, बिंब को अर्पण किया हुआ प्रतिबिंब को स्वतः मिलता है। तो नमस्कार हम करते हैं तो क्या होता है, वह नमस्कार हमको ही आत्मसंतुष्टि का कारण बनता है। परमात्मा के सामने अहंकार विसर्जन नमस्कार, वो परमात्मा को आवश्यकता नहीं हमारे नमस्कार की, लेकिन वो हमारे प्रति वापस आकर आत्मसंतुष्टि का कारण बनता है, इसलिए हम नमस्कार करते हैं। परमात्मा की पूजा हम क्यों करते हैं, परमात्मा को जरूरत नहीं हमारी पूजा की, लेकिन परमात्मा को की गई हमारी जो पूजा है वो वापस हमारी आत्मसंतुष्टि का कारण बनता है, इसलिए हम पूजा करते हैं। क्यों करते हैं परमात्मा के नाम जप, उसको हमारे द्वारा किया गया नाम जप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम यदि उसके नाम जप करते हैं तो वह प्रत्यावर्तित होकर हमारे आत्मसंतुष्टि का कारण बनता है, इसलिए हम नाम जप करते हैं। हरि कीर्तन क्यों करते हैं बोलो, आत्मसंतुष्टि का कारण बनता है। बिंब को अर्पण किया हुआ प्रतिबिंब को स्वतः प्राप्त होता है। सर्गस्थिति प्रलय हेतु अचिंत्य शक्ति विश्वेश्वरं विदित विश्वमनंतमूर्ति निर्मुक्त बंधनमपार सुखांबुराशि श्रीवल्लभं विमलबोधघनं नमामि। नमामि का अर्थ हुआ किसको नमस्कार कर रहे हो, विमल बोध घनम, मल रहित दोष रहित सिर्फ बोध मात्र जिसका स्वरूप है, घन माने स्वरूप, आनंद घन, सत घन चित घन आनंद घन बोलते हैं कि नहीं, परमात्मा को कैसा है परमात्मा, सत घन चित घन आनंद घन। यहां शंकराचार्य जी ने नया शब्द प्रयोग कर दिया, विमल बोध घन का मतलब क्या हुआ, चित घन, घन माने मूर्ति स्वरूप, विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से श्रेय प्राप्ति निमित्ताया नमः सोमार्ध धारिणे। इस श्लोक की व्याख्या कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बहदरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।